नमस्ते शाश्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कालचक्रं भ्रमि तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतन्त्रम् अबुद्धस्य किम् असत्कर्म कि असत्कर्म भी भवेत् कालचक्रं भ्रमे तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतन्त्रम् अबुद्धस्य किम् असत्कर्म भिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमे तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयन् जगत् स्वतन्त्रम् अबुद्धस्य किम् असत्कर्म भिर्भवेत् हरे कृष्ण
कृष्ण
शरम निष्कासन जगात कृष्ण काल चक्रम नित्य काल का चक्र भ्रमी स्वतः घूमता हुआ तीक्ष्णम अत्यंत तेज सर्वम समस्त निष्कर्षयत हाँकते हुए जगत संसार स्वतंत्रम स्वतंत्र तथा कथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की परवाह न करते हुए अबुधस्य इस काल के नियम को न जानने वाले इह इस भौतिक जगत में किम असत कर्म भीर भवेत क्षणिक सकाम कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नारद मुनि ने तेज छोरों तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हरियसों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा, नित्यकाल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ हो। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह श्लोक छौर पव्यम स्वयं भ्रमी शब्दों की व्याख्या करता है जो नित्य काल की कथा का विशेष रूप से द्योतन करने वाले हैं। कहा जाता है कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। महान राजनीतिज्ञ चाणक पंडित के नैतिक उपदेशों के अनुसार आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी न चेन्निरर्थकम नीति काश्च हानिस्ततोधिका। करोड़ों डॉलर देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में गंवा देता है तो कितनी बड़ी क्षति होती है। जीवन के लक्ष्य को न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य मूर्खतावश यह सोचते हैं कि शाश्वतता नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसका 50, 60 या हद से हद 100 वर्षों का जीवन ही सब कुछ है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहाँ पर काल की उपमा तेज छुरे से दी गई है। छुरा तो बाल बनाने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाए तो गजब ढाल सकता है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपने आयु का दुरुपयोग करके आपत्ति न खड़ी करे, उसे अत्यंत सावधान रहकर अपने जीवन का उपयोग आध्यात्मिक साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भागवत के इन श्लोकों पर विचार करने का अवसर प्रदान किए, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद के पांचवें अध्याय का है। आप क्रमशः सुनते आ रहे हैं दक्ष पुत्रों के प्रति, हर्यशों के प्रति देवर्षि नारद जी का सैद्धांतिक बुझौल है। कुछ बातें देवर्षि नारद उनको बताए जिन पर हर्यशों ने विचार किया, तो आप कथा क्रमशः सुनते आ रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए बड़े उत्सुक हैं और अपनी पत्नी पंचजनी से उन्होंने उत्साह में 10,000 पुत्र उत्पन्न किया कि ये सब बड़े बड़े प्रजापति होंगे और एकाएक सारे जगत को कवर कर लिया जाएगा, बहुत तीव्र गति से सृष्टि बढ़ेगी। और ये पुत्र 10,000 का सेठ एक मानसिकता के थे, एक विचार, एक भावना, एक मनोवृत्ति। तो ये लोग सृष्टि के पूर्व भगवत शक्ति अर्जन करने के लिए तपस्या करने गए। पहले हमारे वैदिक इतिहास में ऐसा मिलता है कि कोई भी उन्नत काम करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसके लिए लोग तपस्या करते थे। क्योंकि सृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये लोग अत्यधिक संतान प्राप्त करने के लिए पश्चिम दिशा में जो अरब सागर के निकट है, एक झील है, नदी नहीं है, झील एक सरोवर जैसा है, जो उसमें जाकर तपस्या किए उसके तट पर, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां अपना कुटिया बनाकर भजन करते थे, तो ये लोग भी वहां पर गए और जाकर नारायण सरोवर पर तपस्या प्रारंभ किए। तो इनकी तपस्या की जो प्रवृत्ति थी वो भगवान को संतुष्ट करना, सबसे पहले इनका लक्ष्य था भगवान को संतुष्ट करना। भगवान की संतुष्टि से इस भगवान जब सामने आएंगे तो उनसे हम उन प्रार्थना करेंगे, कृपा याचना करेंगे और फिर सृष्टि करेंगे। तो भगवत संतुष्टि के लक्ष्य से जो उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया वो बड़ा ही शुद्ध सात्विक ढंग का था। तो एक बार देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे तो उनके मानसिक स्थिति को समझ गए कि इतने उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं, इनकी भावना बहुत शुद्ध है। जैसे भगवत संतुष्टि तत् सुख सुखित्वम इनका लक्ष्य है, बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जो सम्मानित संन्यास धर्म को ग्रहण करके जिस मानसिकता में होता है, उस मानसिकता में लोग सृष्टि करने के लिए हैं। तो इन बच्चों को सृष्टि विषयक प्रपंच में नहीं लगाना चाहिए, दया से भर गए, जिस लेवल के हैं उसी लेवल का इनको उपदेश करना चाहिए। तो भौतिक सृष्टि के लिए ऐसे प्रशंसनीय तपस्या उचित नहीं है, यह सोचकर नारद मुनि उन बालकों को जीवन के चरमतम लक्ष्य की ओर इंगित किए। बहुत देर तक रुककर प्रवचन नहीं किए, सांकेतिक रूप में उनको कुछ सिद्धांत बताए और सलाह दिए कि संतान उत्पन्न करना, सृष्टि करना एक सामान्य कार्य है, इससे भी बेटर बेस्ट कार्य है भगवत संतुष्टि जिसमें आप लोग लगे हैं। तो उनका अधिकार था नारद जी के सिद्धांत को समझने का। इसलिए नारद जी को व्याख्या नहीं करना पड़ा, सूत्र रूप में कुछ बातें बोल दिए, उसी को लोग समझ गए। तो नारद जी उनको संकेत किए और जय श्री राधा दास करें। नारद जी के संकेत से ये लोग प्रबुद्ध हो गए, पहले से ही समझदार थे, निर्णय ले लिए कि अब घर गृहस्थी को लौटना ठीक नहीं है। तो अभी तो ये 10,000 का एक अलग सेट है जिनको हरियासु कहा गया, ये लोग विरक्त होकर नारद जी के बातों को समझकर सन्यासी होकर भगवत भजन के लिए चले गए, घर लौटे ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति बड़ा निराश हुए, बुरा लगा। तो चलो अब अपने कार्य में लगे हुए थे, 1,000 का एक सेट और उत्पन्न किए जिनको सबलासु कहा गया, हरियासु के बाद सबलासु। तो सबलासु भी उसी नारायण स्तर पर गए तपस्या करने के लिए। तो देवर्षि नारद देखे कि इनकी भी मानसिकता वैसे ही है, तो इनको तो ज्यादा नहीं, केवल एक संकेत किए कि बेटा अच्छा भाई उसको माना जाता है जो अपने अग्रज का फॉलो करता है। बस अब ये लोग पता लगाने लगे कि हमारे अग्रज हमारे बड़े भाई क्या किए। तो किए क्या, वो विरक्त बनकर चले गए, अपने पिता के राजधानी में लौटे ही नहीं। तो ये लोग भी अच्छा भाई बनने के लोभ से विरक्त हो गए, 11,000 पुत्र विरक्त हो गए। अब तो दक्ष को बहुत भारी चिंता हुई कि नारद तो सर्वनाश कर दिया, सृष्टि में विस्तार की जगह पर पूरा पूरा ह्रास हो गया, रोक दिया एकदम। तो ब्रह्मा जी से कहे कि नारद क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी कहे कि वो अपना काम कर रहा है, तो अपना काम करो, उसका काम है लोगों को भक्ति में लगाना, भगवान में लगाना, आपका काम है सृष्टि विस्तार करना। तो कैसे करें, 11,000 लड़कों को भिक्षुक बना दिया। तो कहे चलो अब लड़का नहीं लड़कियों को उत्पन्न करो, उनके पास नारद नहीं जाएगा क्योंकि विरक्त संत है। तो 60 लड़कियों को उत्पन्न किया दक्ष फिर से। तो नारद जी तो सर्वत्र विचरण करने वाले दक्ष के पास भी पहुंच गए। तो दक्ष तो पहले से ही बहुत क्रोधित था, नारद जी को देखकर एकदम जल गया, कहा कि बेशर्म तुमको थोड़ा भी संकोच नहीं लग रहा है, थोड़ा भी शर्म नहीं है, यहां भी आ गया, मेरे बच्चों को भिक्षुक बना दिया, मैं तुमको श्राप देता हूं किसी स्थान पर अधिक देर तक नहीं टिक पाओगे। उसके मन में था कि वो ज्यादा देर तक रुकता है तो जबरदस्त प्रीचिंग करता है, तो ये नहीं रुक पाएगा तो लोगों का इस प्रकार अहित नहीं होगा उसके दृष्टि में। लेकिन वह श्राप नारद जी के लिए वरदान हो गया, अधिक दिन तक अधिक एक स्थान पर रुकने में आसक्ति हो जाती है, कुछ अच्छा लगने लगता है, तो एक विरक्त के लिए परिव्राजक जीवन अच्छा है, रमता जोगी बहता पानी शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार इस अध्याय का सारांश है संक्षेप में। अभी आप लोग सुन चुके हैं कि दक्ष प्रजापति के पहले सेठ हरियासों को नारद जी 10 बुझौल बुझाए, जिनका अंतिम बुझौल था कि एक ऐसा चक्र है छौर पव्यम स्वयं भ्रमी, एक ऐसा चक्र है जो ऑटोमेटिक घूमता है स्वयं, बड़ा तीखा चक्र है लेकिन उसको घुमाने वाला कोई नहीं है, स्वयं भ्रमी और स्वयं घूमता रहता है। छौर पव्यम, छौर पव्यम और तेज छुरों की धार और वज्र से बना हुआ तीखा चक्र है और घूमता रहता है स्वयं, उसको घुमाता कोई नहीं, अपने आप घूमता है। तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इस श्लोक में अब हरियासु लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसा ऑटोमेटिक घूमने वाला कौन चक्र है। चक्र गोला और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर वो रिपीट होता है। तो ये लोग विचार कर रहे हैं काल चक्रम भ्रमित तीक्ष्णम सर्वम निष्कर्षयन जगत, यह चक्र काल है, वो घूमता रहता है, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा, फिर गर्मी, फिर बरसात, वो घूमता रहता है। छह मुख्य तीन ऋतु, लेकिन छह ऋतुओं के रूप में घूमता है। और सर्वम निष्कर्षयन जगत, और सारे जगत को चलाता है हाँकते हुए, यहाँ अनुवाद किया गया है निष्कर्षयत माने हाँकते हुए, अपने ओर ले जाता है, जिधर चाहता है उधर ले जाता है। सर्वम काल कृतम मन्ने, वो जहाँ चाहता है उधर लेता है, निष्कर्षयन खींचता रहता है अपने तरफ, ले जाता है सारे जगत को। और स्वतंत्रम, वो स्वतंत्र है, किसी से उसका कंट्रोल नहीं होता, स्वयं चलता है, कोई चाहे कि रोक दे उसको तो रुकता नहीं है। यहाँ प्रभुपाद अनुवाद किए हैं कि तथा कथित वैज्ञानिक और दार्शनिकों की भी परवाह नहीं करता है, इतना स्वतंत्र है कि जो अपने को बहुत बड़ा हिटलर बनता है, बहुत बड़ा विद्वान बनता है कि जगत पर कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बड़ा सिकंदर बनता है कि हम सारे जगत को अपने मुट्ठी में रखेंगे, लेकिन किसी का नहीं सुनता है, उनको भी ले बीतता है, चाहे वह हिरणकश्यप हो या रावण हो, छोड़ता किसी को नहीं है। जो कंट्रोल करना चाहते हैं, रुकना रोकना चाहते हैं, काल के गति को नहीं रुकता है, वो तो परिवर्तन करता ही है, चेंज करता रहता है, घूमता रहता है। और उसकी धार इतनी तीक्ष्ण है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, वो पूर्ण स्वतंत्र है। तो अभुदस्य, जो लोग इस काल के गति को नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, वैसे अभुदस्य काल के नियम को नहीं जानने वाले को इह किम असत कर्म भीर भवेत, ऐसे मूर्खों के द्वारा असत कर्म जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सत नहीं है, परमानेंट नहीं है, ऐसे कर्मों को करने से क्या लाभ। काल के गति को समझना चाहिए ना, कितना हूं प्रयास करके हम सुख की सुविधा जुटाते हैं अज्ञान बस। अभुदस्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है, ऐसे मूर्खों के लिए प्रयास करके जुटाने से कोई फायदा नहीं, क्या जरूरत है। किम असत कर्म भीर भवेत, खूब व्यवस्थित करके घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, सारे मार्केट के खाने वाला चीज किचन में लाकर रख देते हैं, लेकिन वो अमर बना देगा, काल ले जाएगा। कितना हूं सारा व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन जाना है, जुटाने वाले को ही आउट कर देता है। हर सिटी में हर जगह घर बनाते हैं कि यहां सुविधा, यहां सुविधा रहेगा, कितना गेस्ट हाउस में रहेंगे, जहां जाएंगे वहां हमारे लिए निवास चाहिए, लेकिन उनको ही नहीं रहने देता है। तो क्या फायदा है, क्या जरूरत है। सुखे रलागिया ये घर बांधिलू, अनल पुड़िया गेला, अमृत बलिया जई त खाइनु, गरल सुधा भेला। चंडीदास जी कहते हैं कि सुख के लिए घर बांधा, बहुत बढ़िया मकान बनाया, लेकिन जब सोने का टाइम आया आराम करने का, तो उसमें आग लग गया। क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करके, जवानी बीत गई घर बनाने में, बुढ़ापा में आराम करने का टाइम आया तो उस एसी रूम में, सोफा सेट में नींद ही नहीं लग रहा है। अब लंबी बीमारी में पड़े हैं, अब नींद ही नहीं है तो घर क्या करेगा। अथवा उस बने बनाए घर को बेटा दखल कर लिया, क्या बकबक करते हो, वृंदावन क्यों नहीं जाते हो, तो अब बताइए अब क्या करेंगे, वो तो आग ही लग गया ना। और जिसको अच्छा समझ कर खाया, खाने के बाद पता चला कि वो विष है। तो इस तरह से जीवन बीतता जा रहा है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तो अबुद्धस्य की हालत है, उसके करने से क्या फायदा। अब बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है, प्रथम स्कंद भागवत के 16वें अध्याय में शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं कलयुग के विषय में, और महाराज परीक्षित और कलयुग के भेंट के विषय में प्रश्न करते हैं। कस्य हेतु निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप, नृप देव चिन्ह धृक शूद्र कोशव गाम य पदाहनत। ये शौनक जी का प्रश्न है सूत गोस्वामी से, कहते हैं किस कारण से महाराज परीक्षित जब जा रहे थे और एक शूद्र निर्देव चिन्ह धृक था, राजा का चिन्ह धारण किया हुआ था, एक शूद्र मुकुट पहना था, लेकिन था वो शूद्र क्षत्रिय नहीं था, और को असौ गाम या पदाहनत, वो गाय को पैरों से पीट रहा था, पैरों से मार रहा था, और महाराज परीक्षित दिग्विजय काल में उसको देखे, तो फिर क्या हुआ। महाराज जब इस तरह के दृश्य देखे, महाराज परीक्षित एक शूद्र को पैरों के ठोकर से मारते हुए, तो फिर महाराज ने क्या किया, जिज्ञासा करें शौनक जी। चलो हो गया जिज्ञासा, हम सुनना चाहिए, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। पांच श्लोकों में प्रश्न तो छोटा सा है कि महाराज क्या किए, क्या एक्शन लिए, लेकिन आगे कहते हैं तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथा श्रयम। हे महाभाग, आप मेरे प्रश्न का उत्तर तभी दीजिएगा जब उस उत्तर का संबंध कृष्ण से हो। ऐसा नहीं कि मैं एक राजा और शूद्र की कहानी पूछ रहा हूं, नहीं। तत्कथ्यता महाभाग, हे महाभाग, आप इसको तभी कहिएगा यदि कृष्ण कथा श्रयम, यदि यह प्रसंग कृष्ण से संबंध रखता हो तब कहिएगा। अगर कृष्ण से संबंध नहीं रखता है तो सुनने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए कृष्ण से संबंध नहीं रखता है तो उसको सुनने में कोई हानि है, सुन लेना चाहिए। तो नहीं, अथवास्य पदाम भोजम मकरंद लिहाम शताम, जिनके चरण कमलों को बड़े बड़े साधु पुरुष सेवन करते हैं उस प्रभु के विषय में हम सुनना चाहते हैं। किम अन्यर असदा लापई आयुषो यद सदवय, ऐसे थर्ड क्लास के असद आलाप को, प्राकृत चर्चा को, न्यूज पेपर आदि को सुनने से क्या मतलब, जिसमें तो टाइम बर्बाद होता है। कहते हैं असद आलाप में आयुषः आयु जीवन का मूल्यवान समय यद असद व्यय, थर्ड क्लास के कामों में खर्च हो जाता है, इसलिए हम अपने मूल्यवान टाइम को इन असत चर्चा में नहीं बिताना चाहते हैं। अगर उसका संबंध कृष्ण से न हो तो मत कहिएगा। अच्छा, एक और विशेष बात कह रहे हैं, क्षुद्रायुषम नृणाम अंग मरता नाम मृत मिक्षताम, हे अंग, संबोधन कर रहे हैं शौनक जी, बड़े प्रेम से स्नेह से सूत गोस्वामी को संबोधन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अंग कहते हैं, अंग माने अभिन्न प्रिय, और शौनक जी सूत गोस्वामी को अंग कहते हैं। वक्ता छोटा है और उधर श्रोता छोटा है, सूत गोस्वामी को संबोधन करते हैं मेरे प्रिय सूत, आशीर्वाद भी देते हैं, हे अंग, आप क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्या नाम मृत मिक्षताम, लोग अपने ढंग से जीवन जीना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में उनका जीवन नहीं है, वो काल के हाथ में है, अभी तक बहुत अच्छा टाइम है, इहो पहुत भगवान मृत्यु समित कर्मणी, अभी हम लोग जो यज्ञ का आयोजना किए तो इसमें भगवान जमराज को आहूत कर दिए हैं, जब तक हमारा जग चलेगा तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगा जो इस जग में संकल्पित हैं। तो बहुत सुंदर वातावरण है कि काल को यहाँ आहूत कर लिया गया है, वो स्वयं स्वीकार कर लिए हैं कि ठीक है आप लोग जग कीजिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आहूत हुए हैं मृत्यु समित्र कर्मणि, इस जग में मृत्यु जो है काल है वो आहूत है, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। न कश्चित मृियते तावद इहांत तावद यावत दास्ता इहांत कह, तब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक काल नहीं बाधित करेगा तब तक कोई नहीं मरेगा। एत दर्थम ही भगवान आहुत परमर्षि भी, इसीलिए हम लोग सर्वसमर्थ भगवान काल को प्रार्थना करके शांत किए हैं कि आप तो घूमते रहते हैं सबको खत्म करते हैं, हम लोग जग स्टार्ट कर दिए और टाइमिंग रख दिए 1000 वर्ष, तो 1000 वर्ष जिएंगे तभी ना जग पूरा होगा, इसलिए पहले अब वहीं से परमिशन लेकर चालू किए हैं, भगवान काल को भी मनाने का कोशिश किए हैं। इसलिए यह जो मूल्यवान टाइम है उसका सदुपयोग किया जाए। अहो निर्लोके पिए तो हरि लीला मृतम बच, इसलिए हे मनुष्य समाज तब तक हरि कथा पीते रहिए जब तक काल नहीं आ जाता है, ये तो पता नहीं वो कब आ जाएगा। अब वे लोग भी कह रहे हैं, उनकी भी पहेली है कि जब तक काल नहीं आया है तब तक तो हरि कथा मृत पिया जाए, पता नहीं वो कब आ जाएगा, वो तो स्वतंत्र है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, स्वतंत्रम पूरा स्वतंत्र है, तो जब तक जीवित है तब तक तो पीना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मित द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भाव का, तो उसमें भी व्यास जी कहते हैं कि इसको पीते रहिए कब तक, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक, पता नहीं कब आ जाएगी मृत्यु। वो आलयम मतलब जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत इसको पीते रहिए, यह है काल का सच्चा प्रयोग। प्रभुपाद जी कहते हैं चाणक पंडित के श्लोक को उद्धृत करके कि आयुषा क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, बीतते हुए समय के एक क्षण को भी करोड़ों डॉलर देकर लौटाया नहीं जा सकता, स्वर्ण कोटि भी सोने के मुहर करोड़ों मुहर देने पर भी इसको नहीं लौटाया जा सकता। तो स्वर्ण कोटि भी का अर्थ इस समय डॉलर से कर रहे हैं अनुवाद। सर्व पहले के जमाने में जब सोने का मुहर चलता था तो कह रहे हैं नहीं लौटाया जा सकता। न चेतन निरर्थकम नीति का च हानिष्ट तोधिका, और दुनिया में कुछ भी लॉस हो जाए इससे बढ़कर कोई लॉस नहीं है। जीवन बीतता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मूर्खता बस नहीं पता चलता है। दशम स्कंद में एक उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु के वर्णन में कि कैसे लोगों का टाइम बीतता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। नैवा विदन छीय माणम जलम गाध जले चरा यथा आयुर अनुहम क्षयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिन। बरसात के दिनों में सारा उदाहरण भागवत में गांवों का है, खेतों का, जंगल का, कोई सिटी का, फैक्ट्री का उदाहरण ही नहीं है। कह रहे हैं कि वर्षा के बीतने के बाद जब जाड़ा आता है तो गाध जले चरा, थोड़े गड्ढे में रहने वाले जलचर, अगाध माने अपार समुद्र जिसकी कोई थाह नहीं है, अगाध मतलब थोड़ा थोड़ा जल रहने वाला, गड्ढे में रहने वाले जलचर बेचारे गड्ढे में रहते हैं, छोटे से गड्ढा में, और पानी बरसात बंद हो गया और सूरज के तीखे किरणों से वो पानी गर्म होता है और सूखता जाता है, और उसमें रहने वाले मछली, केकड़, मेढक, छोटे जलचर प्राणी उसी में गर्म पानी में खौलते हुए पानी में अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन जल खत्म होता जा रहा है, लेकिन नए विदन छीय मारम जलम गाध जले चरा, लेकिन वो बेचारे जलचर नष्ट होते हुए अपने जीवन स्वरूप जल को नहीं समझ पाते हैं। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं, जथा आयु अनवहम क्षयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिना, जैसे मूढ़ कुटुम्बी घर गृहस्थी में अपने पुत्र पौत्र स्त्री बच्चों के साथ परिवार में रहने वाला पूरा उसके आयु क्षय हो रहा है, आयु बीत रहा है, लेकिन पारिवारिक स्थिति में रहने के कारण अपने बीतते हुए आयु को नहीं जान पाता। अभी सजाने के चक्कर में है, बूढ़ा है, कुछ कर नहीं सकता, तो घर दरवाजे पर बैठा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दुकान पर बैठा है, खेत पर बैठा है, और पशु आकर खेत खाने लगे तो दौड़ कर उसको हटा नहीं सकता, वहीं से बैठ देखो वो पशु चल रहा है, इशारा करता है। तो इस तरह से नरा मूढ़ा कुटुंबी न मूढ़ा मूर्ख कुटुंबी परिवार वाला अपने बीतते हुए अमूल्य टाइम को जीवन को नहीं जान पाता है, वैसे ही थोड़े जल में रहने वाले जलचर नहीं जान पाते हैं कि हमारा ये जीवन स्वरूप पानी समाप्त हो रहा है, और धीरे 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 पानी सूख जाता है और उसी गड्ढे में मछली केकड़ जो जलचर प्राणी भी सूखे हुए दिखते हैं। हम लोग कई बार खेतों के नीचे छोटे छोटे गड्ढों में ऐसा दृश्य देखे हैं, धान के खेती होता है, जब धान जाड़े के दिन में पानी सूख जाता है खेतों के गड्ढे से तो जलचर मर जाते हैं, उनका जीवन जा रहा है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि जा रहा है। वैसे जैसे घर गृहस्थी में रहने वाले कुटुंबी का जीवन जा रहा है, ये उदाहरण देंगे, लापरवाही पूर्वक जीवन बीतता है। तो काल चक्रम भ्रमित तीक्ष्णम सर्वम निष्कर्षयन जगत, सारे जगत को अपने अनुसार चला रहा है। तो फिर किम सत्कर्म भीर भवेत, इस तरह से असत कर्म करने से क्या फायदा है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया, बरियाने सत्य प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। तो क्या प्रश्न किए थे? यथा पृक्षामि संसिद्धिम जोगिनाम परमम गुरु पुरुषस्यह जत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। निश्चित रूप से काल के अधीन रहने वाले मरने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए? जो अमर है नहीं मरेंगे उनके विषय में नहीं पूछ रहा हूं, जो मरेंगे 7 दिन में 5 दिन में 2 दिन में 10 वर्ष में 20 वर्ष में म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? यह श्रोतव्यम अथो जप्यम, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? अस्मर्त्यम अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूही अद्वा विपर्ययम, क्या स्मरण करना चाहिए अथवा इसके उल्टा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, इसको बताइए। तो इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, कहे बहुत अच्छा राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो कहते हैं कि ऐसे सुनने कहने के लिए तो हजारों शब्द हैं, जब तक व्यक्ति निद्रा से प्रभावित नहीं हो जाता तब तक बोलता है सुनता है, तो उनका जीवन ऐसे ही बीतता है। निद्रा हिरते नक्तम व्यवाये न चवा व्य दिवाचारते हया राजन कुटुम्ब भरणे नवा। उनकी रात्रि बीत जाती है सोने में, स्त्री प्रसंग आदि में, और दिन बीत जाता है परिवार के मेंटेनेंस के टेंशन में, कमाने में, दुकान में, ऑफिस में, खेत में, बस बीत जाता है। तो ऐसे जीवन बीतता जाता है, बीतते हुए जीवन को लोग नहीं समझ पाते हैं। और देहा पत्र कलत्रादिशु और सैन्य सत्स्वपी सत्स्वपी आत्म सैनेश्व सत्स्वपी तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन नपी न पश्यति। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं तो सोच रहे हैं कि हम ज्यादा बिजी हैं, छोटे से फैमिली मेंबर को देखकर, स्त्री पुत्र परिवार को एक सेना समझकर लोग ऐसे प्रमत्त हैं उसके पालन में कि एक दूसरे को फैमिली मेंबर को मरते हुए देखकर भी नहीं विचार करते कि हम भी उसी क्यू में हैं। यह है उनकी मूर्खता। और इस तरह हे राजन, लोग ऐसे जीवन बिताते हैं, काल चक्र को नहीं जान पाते हैं। काल चक्रम भ्रमी तीक्ष्णम, तीक्ष्ण गति से आयु खत्म कर रहा है, इसको नहीं देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में कर्तव्य है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कृतितव्य च स्मर्तव्य शिक्षता भयम्। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान सर्वात्मा हरि के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो इसको कहकर कहते हैं कि हे राजन, प्रायः बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा लोग इस कार्य में लगे हैं और भगवान के गुणों में रमते हैं। नैर्गुण्यस्था रमनते स्म गुणानुकथने हरे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के गुणों में रमता है और जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो विचार ही नहीं करते कि हमारा जीवन बीत रहा है। तो हे राजन, इस विषय में मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। जो हमारे पिता अधितवान द्वापरादो पितृ द्वैपायना दहम, हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने भागवत की रचना की और हमको पढ़ाया, तो हम उसको ग्रहण किए हैं। मैं आपके जो शेष जीवन का टाइम है उसमें भागवत सुनाऊंगा और यह भागवत केवल हमारे और हमारे पिताजी तक सीमित नहीं है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सब लोगों ने यही निर्णय लिया है। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता कुतो भयम जोगिनाम नृप निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े लोग जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, निर्विद्य को प्राप्त हो चुके हैं। अगर मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहें कि हमको क्या गरज है कि हम भागवत पढ़ें, या महाराज परीक्षित कहें, सुखदेव गोस्वामी का यह अनुभव है कि जिनको कुछ संसार से मतलब नहीं, आत्मा राम मुनि थे, उनको भी 18,000 श्लोकों का भागवत पढ़ना पड़ा। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, यह भगवान की विशेषता है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वंती यह हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। यह भगवान हरि की विशेषता है, किसी भी स्तर का व्यक्ति इसको पढ़ता है, सुनता है। तो कहते हैं निर्विद्यमाना नाम, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा ग्रुप है इच्छताम, जिसको संसार के भोग की इच्छा है, और तीसरा है जोगिनाम, जो भगवान से अपना संबंध जोड़ चुके हैं। सभी प्रकार के लोगों के लिए यह निर्विकल्पिक सिद्धांत है कि हरे नामानुकीर्तनम, यह निर्णित सिद्धांत है। उनको भगवान का कीर्तन, उन भागवत सुनना चाहिए। तो महाराज परीक्षित निराश हो गए, ओहो यह जानकारी पहले हो गई होती तो हम जीवन भर भागवत सुनते, अब तो समय ही बीत गया, 5-6 दिन में क्या सुनेंगे। तब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी उनको उत्साहित करते हुए, किम प्रमोद तस्य बहुभि परोक्षै हाय नै रिह बरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे जतः। हे राजन, लाखों करोड़ों वर्ष की आयु प्राप्त करके पागलपन में अगर बीत जाए तो उसे क्या फायदा है। किम प्रमत्तस्य बहुभि परोक्षई, परोक्षई माने इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, जो हमारे जानकारी में नहीं हुआ कि हम कर क्या रहे थे पागल की तरह, अगर वैसे बीत गया तो उसे क्या फायदा है। बरम मुहूर्तम विदितम, अगर एक मुहूर्त भी श्रेष्ठकर है यदि जानकारी में बीते, भगवान की भक्ति में बीते, वही जीवन सार्थक है। घटित श्रेयसे जतः, अपने जीवन के कल्याण के लिए, हितकारी कार्यों के लिए अगर समय बीतता है तो यह श्रेष्ठ है। अब चिंता मत कीजिए, जो बीत गया बीत गया, जो टाइम है उसको ध्यान रखिए, आप भागवत सुनिए। तो फिर भी महाराज निराश लग रहे थे, क्या सुनूंगा 7 दिन में। तो कहे आप निराश क्यों होते हैं, खटवांगो नाम राजर्षि अज्ञातवे अत्यामिहाई स। खटवांग नाम के एक सूर्य वंश में राजा हुए, जिनको अपने जीवन के अंत में जानकारी हुआ 2.5 घड़ी शेष बचा है। 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा, 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, 48 मिनट का 2 घड़ी और 60 मिनट का आधा, पूरा मिलाकर 1 घंटा, 2.5 घड़ी। तो 2.5 घड़ी ही उनके जीवन का शेष बचा था जब वो स्वर्ग में देवताओं को मदद करने गए थे। भागवत में छिटपुट कथा है, खटवांग महाराज का 3-4 जगह उदाहरण है, एक जगह बंसावली में नाम आया है और 2-3 जगह उदाहरण है कम टाइम में भगवान को प्राप्त करने वाले। तो स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने गए थे और जब सहायता कर लिए तो देवता लोग कहे कि महाराज हम आपके लिए क्या दे सकते हैं, तो कहे कि आप लोग क्या दे सकते हो जब हमारी मदद की अपेक्षा है, तो आप ये बतला दो कि हमारे जीवन में कितना टाइम बचा है। तो लोग कहे कि महाराज केवल एक घंटा ढाई घड़ी, तो कहे कि कोई व्यवस्था करो तेज गति से चलने वाले विमान से हमको सरजू के तट पर अयोध्या पहुंचा दो, सूर्य वंश के राजा थे, भारत वर्ष में भेज दो, ये भोग प्रधान स्वर्ग में मैं नहीं रहना चाहता, जल्दी भेजो बस इतना ही कृपा कर दो। तो खटवांग महाराज को तुरंत सरजू के तट पर भेज दिया गया, सरजू के जल में आचमन किए, बैठ गए एकदम पद्मासन में समाधि में, अपने चित्त को भगवान में एकाग्र किए और शरीर छोड़ दिए। तब तक उनके लिए विमान आ गया, केवल एक घंटा भजन किए उसमें विमान आया और वो विमान स्वर्गीय लोकों को पार करते हुए भगवत धाम चला गया। जो देवता लोग अभी पहुंचाए वो स्वागत के लिए गेट पर खड़ा थे, विमान चला गया, सारे सत्य लोग स्वर्ग लोक को पार करते हुए, स्वलोक स्वर लोक जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक देवी लोक और महेश लोक को पार करते हुए, हरिधाम सुते सुते सु देवी लोक को पार करते हुए ऊपर के लोक में चला गया। तो ये है खटवांग महाराज को कम टाइम में भजन करने वाले, अपने जीवन के टाइम को समझने वाले। तो आपके पास तो अभी 7 दिन बाकी है, तवा अपि तरहि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ऑडियंस के मूड को देखकर वक्ता समझ जाता है किस अवस्था में है। तो कह रहे हैं आपके पास 7 दिन टाइम है, अब चिंता मत कीजिए। उपकल्प्य तत्सर्वम जावत यत संपरायिकम, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है हम आपको एकदम भागवत सुनाएंगे और भगवत धाम की योग्यता दे देंगे, बस चुप सुनिए। तो यह है जीवन का सदुपयोग, यह है इसमें हम भागवत सुनने में भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लास्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह काल बहुत खतरनाक है, छुरे की तरह है, अगर सावधानी से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये गला भी काट सकता है दुरुपयोग करने पर। तो मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपने आयु का दुरुपयोग करके आपत्ति मोल न ले, उसे अत्यंत सावधान होकर अपने जीवन का उपयोग करके आध्यात्मिक साक्षात्कार करे, कृष्ण भावना के लिए करे, अपने भक्ति को उन्नत बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को अपनी चेतना को कृष्ण के तरफ ले जाने में समय का उपयोग करे। अहो निर्लोके पियेत हरिलीला मृतम बचह, केवल भगवान की कथा कीर्तन में ही जीवन बिताना चाहिए, तो ये काल कुछ नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के सामने काल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, जो स्वतंत्र है ना, ध्रुव महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था कि इनको मारें। पूछे तुम कौन हो, तो हम काल, यहां कैसे आ गया। तो सरकार आप बैकुंठ जाने के लिए तैयार है, विमान खड़ा है, लेकिन इस संसार का नियम है कि जो आया है वो इस शरीर को छोड़ता है, शरीर प्राकृत है, और फिर पार्षद शरीर से बैकुंठ जाइए, इस शरीर को छोड़ दीजिए, तो छोड़ा दीजिए ना, पूछ क्यों रहे हैं। क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ा काल का, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया, तब तक एक स्टेप का काम किया, उसके सिर पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए, सशरीर ध्रुव महाराज वैकुंठ चले गए। उनके सामने काल भी कुछ नहीं कर पाया, यह है भक्ति का प्रभाव। और दशम स्कंद में देवताओं के स्तुति में, गर्भ स्तुति में देवता लोग कहते हैं कि आपके भक्त लोग काल के सिर पर पैर रखकर चलते हैं, निर्भय विचरण करते हैं, उनको कोई टेंशन कोई भय ही नहीं है। तो ये भक्ति एक ऐसा साधन है जहां काल प्राकृत नहीं है, काल स्वयं भगवान है, और जब भगवान भक्ति के प्रभाव से अनुकूल हो जाते हैं तो काल भी अनुकूल हो जाता है। भगवान ही काल है, प्राकृत नहीं है। तो वह काल भगवान अनुकूल हो जाते हैं और भक्त जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। इसलिए इसका सबसे सच्चा असली उपयोग है कि सावधानी पूर्वक भजन में समय को बिताया जाए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। समय हो गया, कोई जिज्ञासा? क्या जी?
जानते हैं कि काल तो भगवान है, तो फिर वो कैसे?
नहीं, भगवान भी कभी कभी सारे जीवों के अंदर भी भगवान ही रहते हैं ना, परमात्मा रूप में। लेकिन विविध प्रकार का जीव कर्म करता रहता है, विविध प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, तो काल के रूप में स्वयं भगवान के रूप में नहीं है ना, वो जगत को चलाने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में है। कभी कभी भगवान भक्त के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। तो भगवान होते हुए भी भगवान जैसा नहीं, दास जैसा, भगवान के भक्त जैसा व्यवहार करते हैं। तो जो जीवों को मारने की चुनौती दे रहा था, तो एक क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण ध्रुव महाराज उस चुनौती को स्वीकार कर लिए। तो मारने आया है तो उनका स्वभाव शुरू से ही वही था, उसी जोम में, उसी जोश में भजन किए, छह महीना में भगवान को पाए, उसी जोश में उत्तम के बदला लेने के लिए कुबेर जी के अनुचरों को मारे, और लास्ट में उसी जोश में काल के सिर पर पैर भी रख दिए। देखिए, तो उनका अपना स्वभाव है, दुस्तेज स्वभाव। तो भगवान है लेकिन वो मारने वाला के काम करते हैं। भगवान की शक्ति माया है लेकिन फिर भी भगवान की ही शक्ति है ना, फिर भी भगवान के सामने होने में इसको हिम्मत नहीं होता, क्योंकि जीवों को सताती है। उसी प्रकार काल के रूप में जो भगवान है वो स्वरूपगत भगवत स्वरूप में नहीं है, वो मारने वाले के रूप में है, इसलिए उनके चुनौती को स्वीकार कर लिए। चलो,
हरे हरे कृष्णा। और इतना हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद भी क्यों हम लोग डिटरमाइंड हो नहीं पाते कि सबको मालूम है कि हम लोग मरना है और अपने जीवन को परफेक्ट करना है, लेकिन तभी भी सारा संसार हम लोग सब इसमें फंस जाते हैं पूरी तरह से। इसमें इतना अच्छा लगता है लेकिन इसको, मेन चीज को भूल जाते हैं। इसका वजह क्या है?
इसका वजह है कि हम जन्म जन्मांतर से इन्हीं सब कार्यों में रहे हैं, अब बहुत कम टाइम से इसमें लगे हैं आध्यात्मिक भजन में। नहीं तो हमारा जीवन पता नहीं कितने जन्मों से इसी प्राकृत विषयों में रमा है, हमको आदत पड़ गया है इसका। धीरे 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 धीरे, जैसे बंगाल उड़ीसा के लोग भात खाते खाते भात ही उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब वृंदावन रहने लगते हैं तो अब रोटी भी खाने लगते हैं भात। तो अब क्या करें, उनको पहले शुरू में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब देखिए कुछ वृंदावन के ऐसे बंगाली भक्त हैं जिनको भात नहीं चाहिए, अब रोटी ही खाते हैं। और हमारी स्थिति, हम लोग जो चाहते हैं टेस्ट, देखिए 100 लीटर दूध, प्योर गाय का दूध जुटाकर, एक बूंद दूध पानी नहीं, और उसमें खीर बनाइए, ड्राई फ्रूट डालकर, इलायची आदि, बढ़िया सुगंधित खीर, उसका टेस्ट। और ऐसे खीर में भी अगर 100-200 ग्राम किरासन तेल गिर गया तो सारा टेस्ट खत्म। लेकिन हमारी हालत क्या है कि 90-95 लीटर के किरासन तेल में 5 लीटर दूध डालकर खीर बनाना चाहते हैं, और कहते हैं इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। वो टेस्ट कैसे आ जाएगा? अभी हम थोड़े समय में 1 घंटा का क्लास सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर बाहर जाकर देखिए दुनिया भर के होल्डिंग, दुनिया भर की बातें, संसार की भोगों की हो रही है। तो हम अपने औसत टाइम को 24 घंटा में कितना भगवान में दे पाते हैं और कितना संसार में? अधिकांश टाइम हम संसार को ही दे रहे हैं, वर्तमान में भी, साधु वेश में भी। हमारी दृष्टि, हमारा कान क्या कर रहा है, दो चीजों से हमारे चित्त पर नेगेटिव तैयार होता है। ये हमारा एक चित्त जो है कैमरे की तरह है, वो दो तरह से लेंस है, और फोटो लेता है, जानते हैं किसका? देखने से और सुनने से। अदृष्टाद असुताद भावा नो भाव उपजाए थे। अगर हम जो चीज देखे ना और सुने ना तो हमारे चित्त पर वो असर नहीं होगा। तो हम संसार में कितना भगवान के विषय में देखते हैं और कितना सुनते हैं और कितना संसार में, तो इसको औसत निकाल कर देखिए कि वर्तमान टाइम में ही अधिक संसार को देख रहे हैं, संसार का चीज सुन रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये फोटो यही तैयार होता है, इसको लेंस कहा गया। महाप्रभु दर्पण कहते हैं, चेतो दर्पण। तो दर्पण गंदा हो गया है और दर्पण की गंदगी क्या है, भोगों की विषयों की लालसा चाह, ये चित्त की गंदगी है। तो दर्पण का स्वभाव है कि जो सामने आएगा वो चित्रित होगा, जो जितना नजदीक रहेगा वो चित्र दिखेगा दर्पण में। लेकिन दर्पण के निकट, सबसे निकट भगवान है, सर्वत्र है, लेकिन दर्पण इतना गंदा हो गया है, इस पर धूल कालिक पड़ गया है कि प्रतिबिंबित ही नहीं हो रहे हैं। तो पहले उसको धोना पड़ेगा, तो वो किसी केमिकल से भी वो साफ नहीं होता है। कभी कभी अलकतरा आदि लग जाता है तो केरोसिन डालने से वो गीला होता है, सफाई होता है। लेकिन चित्त की गंदगी किसी रूमाल से, पानी से या केमिकल से नहीं धुलता है, इसको भगवत भक्ति से, कीर्तन श्रवण कीर्तन से धुलता है। तो बहुत ज्यादा धोने के बाद तब दिखाई देगा भगवान, सामने दिखेंगे, प्रतिबिंबित होने लगेंगे भगवान। तो हम लोग अपने जीवन में अधिकांश विषयों का ही सेवन करते हैं, इसलिए भक्ति का सुख का आस्वादन नहीं हो पाता है। यदि हम करते रहेंगे निरंतर भजन तो निश्चित रूप से निकल जाएगा।
जब जब करते हैं ना, जब का समय मन लगता है ये अच्छा भोजन करके सो जाना चाहिए, ये क्या है, मिलेगा ऐसे, मन तो ऐसा बार बार चाहता है ना। बोले सोना वाला जब भी नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा। बाहर जो लोग आते बोले इसकोन वाले खाली हरे कृष्ण आते, सब प्रसाद आता है, ये हरे कृष्ण कौन बोलेगा, इसे हरे कृष्ण माला जपोगे नहीं ठीक नहीं, तो प्रसाद आता है भोजन करके चलो ऐसा बोलते सब। फंक्शन टाइम पर ज्यादा लोग आते ये प्रसाद पाने के लिए, किंतु भोजन करने के लिए कोई नहीं बढ़ते। दो घंटा मेरे पास बैठे तो कोई नहीं बढ़ते,
क्योंकि उसी में वो रहे हैं ना, वही खाए पिए देखे हैं तमाशा, तो उनको ही अच्छा लगता है, उनका आदत पड़ गया है, संस्कार पड़ गया है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन इसको आदत देने के बाद आदत पड़ जाए। जैसे छोटा सा बच्चा जो माँ के स्तन का दूध पीता है, उसको अगर रोटी चावल दो तो नहीं खाना चाहता, लेकिन माँ को पता है कि मेरे स्तन के दूध इसको जीवन भर काम नहीं आने वाला है, तो रोटी को चावल को दूध में लिक्विड बनाकर किसी तरह पिलाती है, खिलाना सिखाती है, फिर भी उल्टी कर देता है, उसको कहां पसंद है, थूकता है, नहीं खाना चाहता है, जबरदस्ती खिलाती है, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती करते 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 जब खाने का उसका आदत पड़ जाता है, तो फिर अभी भोजन तैयार नहीं है उसके पहले मांगने लगता है, मुझे रोटी दो, मुझे भात दो, मुझे ये दो, वो दो मांगता है। जब आदत पड़ जाता है तो मांगने लगता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हमको दिक्कत होता है, लेकिन हमको किसी तरह जबरदस्ती भी इसको लगाना चाहिए। लगाते लगाते जब आदत पड़ जाएगा, अभी तो मन भाग रहा है क्योंकि वो इसको किया नहीं है ना, जो दूध पिया है माँ के स्तन का वो रोटी चबाएगा, वो जानता ही नहीं है रोटी चावल। लेकिन जब सीख जाता है तब उसको चाहने लगता है, उसका फेवरेट हो जाता है रोटी चावल, और बिना उसके नहीं रहता। तो हम लोग प्रारंभिक अवस्था में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ता है, इंद्रियां बिगड़ चुकी है, इसको इधर लगाने में कठिनाई होती है। लेकिन एक रेंज तक हमको प्रयास करना पड़ता है। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, एक शक्तिशाली चुंबक के पास लोहे का सिक्का ले जाएं, तो उस चुंबकत्व तो है, वो खींचेगा, लेकिन एक रेंज तक तो ले जाना पड़ेगा नजदीक, और अपने रेंज के अंदर वो जब पाएगा तो उसको पकड़ लेगा। चुंबक पकड़ लेता है सिक्के को, और सिक्का जब चुंबक के पकड़ में आ जाता है तो दूसरा सिक्का अगर सिक्के के पास ले जाते हैं तो सिक्का भी पकड़ने लगता है। जब हमारी मति अभी जप में नहीं लग रही है और जब जप करते 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 जप का टेस्ट मिलने लगता है तो हम सौहार्द बस दूसरों को भी सिखाते हैं यार इसमें ज्यादा टेस्ट है, दूसरों को खींचते हैं। तो एक रेंज तक हमको प्रयास करना है और फिर जब उस स्पिरिचुअल रेंज में आ जाएंगे तब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब उसके बिना रहा ही नहीं जाएगा। जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुआ मनो भी, जब अपने स्थिति में स्थित होकर जीव कहीं भी जिस स्थिति में है, धनी है गरीब है या घर में है यहां है अमेरिका में है भारत में है कहीं भी है, कहीं भी रहकर जब आपकी कथा सुनता है और सुनते 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 उसके जीवन स्टाइल यही हो जाता है, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, बिना कथा के वो नहीं जी सकता, तब जब ये स्थिति आ जाती है तो अजितो अपि जीतो असी, आप अजीत को भी वो जीत लेता है। आप दुनिया में फेमस हैं, अजय विजेता अजित नाम है भगवान का, अजित गोविंद अजित कृष्ण, जिनको कोई जीत नहीं सकता उस अजित को भी वो जीत लेता है, जैसा चाहता है वैसा उनको करना पड़ता है। अजितो अपि जीतो असी, ऐसे अजित को भी जीत लेता है, कब, जब अपने उसका जीवन स्टाइल हो जाता है आपकी भक्ति श्रवण कीर्तन, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवान की कथा को ही सुनना बोलना उसका जीवन हो जाता है, बिना उसके रह नहीं सकता। तो आदत डालते डालते ये अवस्था आ जाती है, उसको बाहर कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी भक्त जो टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, बाहर के कुछ नहीं जानते, उन तो कुछ हो ही पता भी नहीं चलता है कि कौन जीता कौन हारा किसकी सरकार, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन बाहर के लोग उसी को देखते हैं और वो चैनल वाला भी उसी को दिखाते हैं, एक ही बात 50 बार उसमें और मसाला मिला मिला कर दिखाते हैं, उनको उसमें आनंद आता है, भक्तों का टाइम बर्बाद होता है, वो सोचते हैं कि हम इसमें क्यों टाइम बर्बाद करें। तो आखिर ये कुछ प्रगति तो है ना, परसेंटेज चाहे जो हो, हम भले 99% नहीं है लेकिन कुछ परसेंटेज में तो अंतर समझ में आ रहा है ना बाहर के लोगों से अपने में। तो घबराइए मत, जबरदस्ती करना पड़ेगा कुछ काल तक, इसके बाद फिर आदत बन जाएगा तो कोई बात नहीं, स्वतः होने लगेगा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेरणा देने के लिए। प्रभु जी मेरा जिज्ञासा ये है कि भगवान के जो धाम है वो अप्राकृत है, वहां जड़ता नहीं है, यहां तक कि यहां का सूर्य भी वहां नहीं जा सकता है। हाँ। परंतु जैसे तुकाराम महाराज, हाँ। ध्रुव महाराज, हाँ। गोकर्ण जी, ये सब शरीर के साथ ऐसे कैसे अप्रकृत धाम में जड़ शरीर के साथ प्रवेश कर जाते हैं, किस प्रकार से इसका थोड़ा सा।
तो ये भगवत धाम की विषय है, भगवान की चीज है, भगवान उनको ले गए ना, तो भगवान प्राकृत को भी अप्राकृत बना सकते हैं, यहां एक प्राकृत वस्तु को भी अप्राकृत बना सकते हैं, उनकी इच्छा से कुछ भी हो सकता है, वो भगवत इच्छा से ऐसा हुआ। कभी कभी एक साधारण लोहा घूमता है, घूमने लगता है, उसको एक चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो घूमता है, उसमें घूमने की शक्ति हो जाती है। तो भगवान स्पिरिचुअल है, उनके संपर्क में आते ही शरीर भी स्पिरिचुअल हो जाता है। देखिए कभी कभी प्रश्न होता है कि भगवान के नाम भगवान की भक्ति ये स्पिरिचुअल तत्व है, हमारा जीव प्राकृत है, तो प्राकृत जीव से भगवान का संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए अधोक्षज कहे गए हैं भगवान, हमेशा इंद्रियां पिछड़ जाती है। लेकिन भगवान के नाम में गुण में इतनी शक्ति है कि हमारे इंद्रियों को भी स्पिरिचुअल बना देती है। जीव जब स्पिरिचुअल हो जाती है तभी नाम बोलती है, कान भी स्पिरिचुअल हो जाता है कथा सुनते सुनते। उसी प्रकार अगर भगवान चाहे तो एक व्यक्ति का ये प्राकृत शरीर स्पिरिचुअल तत्व में बदल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है, भगवत इच्छा से होता है। एक कोई रेयर केस है, ऐसा नहीं कि नियम है, लेकिन भगवान अगर चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुकाराम गोकर्ण या इनको ध्रुव महाराज के शरीर को, गजेंद्र के शरीर छूटा नहीं, गजेंद्र के शरीर को सीधे पार्षद शरीर में चेंज कर दिए। केवल एक दो उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है लेकिन अपवाद, ये नियम नहीं है।
हरे कृष्णा प्रभु, आपने मेरे प्रश्न के तो उत्तर तो दिया है, फिर भी मैं एक बार सुनना चाहता हूं आपसे मुख से। आपने ये बोला कि जितने भी समय बाकी है हरि हरि के कथा में लगना चाहिए, हरि के कथा पीना चाहिए। आपने ये भी बोला कटवांग महाराज एक घंटा था उसने भगवत धाम प्राप्त किया। आपने ये भी बोला कि चित्त को साफ करने के लिए बहुत समय लगेंगे। जैसा मेरा, मैंने बहुत पाप किया है जिसके वजह से हृदय से मैं माला जप नहीं कर सकता हूं। खास करके जिन्होंने मुझे प्यार दिया, संस्कार दिया, मेरा अच्छा चाहा, और मैंने उसको बहुत सारे ऐसे काम करके ठेस पहुंचाए जो बार बार मेरे सामने आते हैं, जिसी की वजह से हृदय से मैं चैंटिंग नहीं कर सकता हूं। तो अभी और कितना समय लगेंगे जब हृदय पूर्ण चैंटिंग करने के लिए?
तो आप अपने को अगर बहुत दुरात्मा पापी अपराधी मानते हैं तो इसमें निराशा की जरूरत नहीं है। इसमें दैन्यता तो होना चाहिए कि वास्तव में हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान के नाम पर, भगवान के भक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अवश्य अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण का नाम हमारे पापों को ध्वस्त करेगा।
महाराज बात ऐसा है कि उनसे माफी करने के लिए वो जगत में नहीं है।
नहीं नहीं, उनके जगत में है ना, नाम के रूप में, कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार, और इस श्री विग्रह के रूप में सामने है। इनसे हम माफी मांग सकते हैं? माफी मांगने की बात ही नहीं है, आपका सब कुछ माफ है जब आप नाम के आश्रम में हैं। और नाम का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से, देखिए हमारे करोड़ों जन्म का पाप है जो हमको भजन से रोकता है, ब्रेकर है। इस विषय में महात्मा लोग कथा कहते हैं कि दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के पेड़ के यहाँ, एक इमली के पेड़ के यहाँ, और देवर्षि नारद उधर से गुजरे तो दोनों पूछ दिए कि आप तो भगवान के पास जाते हो, जरा पूछ कर आओ ना हम लोगों को कब दर्शन देंगे, कब उनके धाम में जाएंगे। तो नारद जी दोबारा आ गए तो पीपल के पेड़ वाले के पास आगे गए तो कहे कि नारद जी हमारी बात भगवान से पूछे। हाँ पूछ लिया। तो क्या कहे? इस पेड़ में जितना पत्ता है उतना 100 वर्ष लगेगा। तो कहे बाप रे बाप, उतना टाइम लगेगा? निराश हो गए। अच्छा निराश हो गया तब तक इमली के पत्ता पेड़ के पास गए तो उसे भी यही बात कहे। इसको 100 वर्ष कहे थे, उसको कहे कि जितना पेड़ में पत्ता है उतना 1000 वर्ष लगेगा तुमको। तो कहा बस हमारे जैसे पापी का नंबर आ जाएगा बस इतने दिन में। एकदम उछलने लगा, खुशी में उछलने लगा, बस इतना कम टाइम में, इतना खुशी में नाचने लगा, इतना विभोर हो गया कि उसी समय भगवान आ गए। उसी समय आ गए। तो ये भगवान हमारे ऊपर कृपा, हम उस कृपा के लायक नहीं हैं, लेकिन हम पर भी कृपा करते हैं, ये कर सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा भरोसा है। रूप गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तो कहते हैं कि हे प्रभु, अपने पापों का जब स्मरण करते हैं, आप पतित पावन है ये सुनकर आए हैं, आप पतितों के उद्धार के लिए आए हैं, तो पतितों का अन्वेषण करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कहां कहां पतित हैं, तो हम दोनों से बढ़कर कोई पतित नहीं मिलेगा, एक नंबर के पतित हैं, तो आप हमारा उद्धार कर देंगे तो आपका पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद उनको क्षोभ हुआ कि इतना तो बहुत वकालत कर रहा हूं लेकिन मेरी योग्यता है क्या गौर परिकर होने का? तो कहते हैं अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ। हे प्रभु, अपनी अयोग्यता पर जब विचार करता हूं तो हिम्मत नहीं होता कि हम आपके पास आ सके, हम भी गौर परिकर बने, ये साहस नहीं होता। बामन है या चांद छूते इच्छा करे, जैसे छोटा बावना चांद छूना चाहता है, वैसे हमारे हृदय में आपसे संपर्क करने की लालसा है, लेकिन अपने अयोग्यता पर विचार करने पर मन में क्षोभ होता है, फिर भी आपके महत्वपूर्ण गुण पर विचार करने पर लोभ होता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, इतना कंप्लीट है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। तो कोई कह सकता है कि अजामी वो क्या नाम है, जगाई मधाई का उद्धार किए, तो कहते वो लोग तो धाम के व्यक्ति थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, भगवान का दर्शन करते थे, नाम ले लेकर निंदा करते थे, वह नामाभास उनका उद्धार कर दिया, लेकिन हमारा नंबर नहीं आएगा। निराशा है, लेकिन आप पर भरोसा है, विश्वास है कि आपके गुण इतने महत्वपूर्ण है कि उसे लोभ हो रहा है। तो महाप्रभु कहे बस बस, ज्यादा दैन्यता मत दिखाओ, तुम्हारे दैन्यता से हमारी छाती फट रही है। आज ही ते तुम्हार नाम रूप सनातन, उसी दिन इनिशिएशन दे दिए, उसी दरवेश में सेविंग नहीं कराए, वैष्णव वेश नहीं था, फिर भी महाप्रभु कहे तुम लोग मेरे पुरातन सेवक हो, आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन। तो यह भगवान के गुणों पर, भगवान के कृपा पर भरोसा रखना एक भक्ति है। तो निराश नहीं होना चाहिए, भगवान कृपा करेंगे निश्चित। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी जैसे बताए थे स्पिरिचुअल शरीर।
अच्छा, कब तक चलेगा ये?
मैं लास्ट प्रश्न।
अच्छा,
ये आध्यात्मिक शरीर होता है जैसे महात्मा महाजनों का या प्रभुपाद जी का भी, और फिर ऐसे कहते भगवान का शरीर ट्रांसेंडेंटल है।
क्या क्या?
भगवान का जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है। तो मैं पढ़ भी रहा था कहीं पर भी कि बड़ा स्पष्ट स्पिरिचुअल, ये शब्द स्पिरिचुअली शरीर लिखा गया है, ट्रांसेंडेंटल नहीं लिखा गया भक्तों के बारे में। तो अंतर क्या है प्रभु जी, भगवान का ट्रांसेंडेंटल बॉडी में और भक्तों का स्पिरिचुअल बॉडी शुद्ध भक्त का जो बोला जाता है, उसमें क्या अंतर है?
देखिए,
क्योंकि वो भी
एक तत्वतः स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल बनाया जाता है। भगवान का शरीर एकदम तात्विक रूप से स्पिरिचुअल है, और उसके संपर्क में आने से जो हमारा भौतिक शरीर है वो स्पिरिचुअल होता है। यहाँ जो भक्तों का शरीर है वो प्राकृत है, लेकिन वो उनके संपर्क में रहने से इसमें स्पिरिचुअल गुण आ जाते हैं। दोनों में अंतर है, तात्विक रूप से स्पिरिचुअल नहीं है, वहाँ जो उस रूप में है सच्चित आनंद आत्म स्वरूप में वहाँ स्पिरिचुअल है, लेकिन यह जो शरीर मिलता है प्राकृत मिलता है, और भगवान का प्राकृत शरीर नहीं होता, वो उसी रूप में आते हैं। और भक्त लोग यहाँ प्राकृत शरीर ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान के संपर्क में रहते 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 रहते, जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि लोहे का सिक्का भी चुंबक हो जाता है चुंबक के संपर्क में, वैसे स्पिरिचुअल होता है। वो सिक्का भी खींचने लगता है दूसरे सिक्का को ना, तो चुंबक हो जाता है ना, तो वैसे चुंबक होता है। तो सीका तत्वतः चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबक के संपर्क में चुंबक रहता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।